نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمين يا رب العالمين. يمحق الله الربا، اللہ تعالیٰ مٹاتا ہے ربا کو، سود کو اللہ مٹاتا ہے، اور کس کو بڑھاتا ہے؟ یربی الصدقات، صدقات کو بڑھاتا ہے. اب یہ آ گیا نا، علم غیب کی بات آ گئی یہاں پہ. آپ دیکھیں، اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے. اب ایمان بالغیب تو یہی ہے نا کہ ہم اس پہ یقین کر لیں. حالانکہ ہمیں نظر کیا آ رہا ہے؟ ہمیں نظر یہ آ رہا ہے کہ ہم بینک میں رکھتے ہیں، جی ہم نے $1,00,000 رکھا، اور اس کے بعد اگلے مہینے وہ 1,01,000 ہو گیا، اس سے اگلے مہینے 1,02,000 ہو گیا، تو میرا تو مال بڑھ رہا ہے، گھٹ کا بھرا ہے؟ اس نے کہا گھٹ رہا ہے، مجھے تو نظر آ رہا ہے، مجھے تو اتنی سیونگ ہو رہی ہے، میں نے سیونگ اکاؤنٹ میں رکھا ہوا، اس میں انٹرسٹ مل رہا ہے مجھے. تو آپ کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ مٹاتا ہے. مٹانے کا مطلب کیا ہے؟ میں نے ایک بات آپ کو کیا کہی کہ بالکل اللہ تعالیٰ برباد کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے اس کو. اور واقعی جو اللہ کی بات ہے وہ سچی ہے، جو میری آپ کی بات جھوٹی ہو سکتی ہے، اللہ کی بات نہیں جھوٹی. اور دوسرا ہے ضائع کر دیتا ہے. دیکھیں دونوں باتوں کو ہم دیکھتے ہیں، ایک ہے نا مٹا دینا. اب مٹانے کے اندر کیا آ سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ پورا کا پورا جو اس کا ہے کہیں ایسا اس نے رکھا، آگ لگ گئی اس کی چیز کو، یا کہیں ڈاکہ پڑ گیا، یا کوئی ایسی چیز ہو گئی، ختم ہو گیا بالکل. آخرت میں تو بالکل ہی نہیں نا اس کو ملنا، آخرت میں تو ببال ہی ببال ہے. دنیا کا میں بتا رہی ہوں، دنیا میں بھی اس کا مشاہدہ ہوتا ہے، آخرت میں تو مٹ ہی گیا، آخرت میں تو کچھ فائدہ ہی نہیں ہے، کچھ کام نہیں آئے گا، بلکہ الٹا اس کے لیے مصیبت بن جانا. صدقہ خیرات کرنے والے کا آخرت میں مال کیا بڑھتا ہے نا، جو ہم نے حدیث پڑھی بھی ہوئی ہے کہ ایک کھجور کو بھی اللہ تعالیٰ احد پہاڑ کے برابر کر دے گا، تو بڑا نا. تو آخرت میں تو صدقہ بڑھ رہا ہے، وہ تو ہمارا ایمان ہے، اور سود کا تو کچھ نہیں ملنا، اس کی تو سزا ہے. لیکن دنیا میں کیسے ہے کہ مال خود ہلاک ہو جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے، کہ یعنی آپ دیکھیں ڈوب جاتا ہے کئی دفعہ، کہیں دیوالیہ ہو گئے، بڑے بڑے سرمایہ دار آپ نے دیکھا کہ دیوالیہ ہو جاتے ہیں، فوری طور پہ ایسے لگتا ہے کہ بڑھ رہا ہے، لیکن وہ بڑھنا باقی نہیں رہتا. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اولاد میں یا نسلوں میں انسان کا یہ ہوتا ہے نا ہمیشہ کہ میں نے اتنا بنا لیا ہے، جی میری تو نسلوں تک چلے گا، میری تو نسلیں آپ بیٹھ کے کھائیں گی. نہیں، ایسی کوئی آفت آ جاتی ہے، وہ سب برباد ہو جاتا ہے، نسلوں میں نہیں چل سکتا. اسی لیے حضرت معمر نے فرمایا کہ ہم نے بزرگوں سے سنا ہے کہ سود خور پہ 40 سال گزرنے نہیں پاتے کہ اس کے مال پہ کوئی گھاٹا آ جاتا ہے، محاق آ جاتا ہے، مٹ جاتا ہے نا بالکل، 40 سال نہیں گزرنے پاتے. تھوڑا ہو سکتا ہے اس وقت کے لوگ تو تھوڑا بہت فائدہ اٹھا لیں، مگر نہیں، ناٹ فار لانگ. اور اگر ظاہری طور پہ مال آپ کو نہیں بھی برباد ہوتا نظر آ رہا نا، تو اس کی برکت ختم ہو جاتی ہے، برکت سے محروم ہوتے. کہ برکت ایک ایسی چیز ہے جو آپ دیکھ نہیں سکتے، یاد رکھیں، برکت صرف محسوس کی جا سکتی ہے. سود خور کا مال چاہے بڑھتا ہوا نظر آئے، لیکن میں نے آپ کو جیسے بتایا نا کہ وہ جو انسان کے اوپر سویلنگ ہو جاتی ہے، تو آپ کو ایسے لگتا ہے کہ بہت کتنا بڑا جسم ہو گیا، لیکن وہ بڑا اچھا نہیں ہے، وہ تو بلکہ بیماری ہے. تو یہ جو اس کے پاس اتنا بڑھ گیا ہے نا، اس سے اللہ تعالیٰ نے برکت کھینچ لی ہے. اب کیا ہوگا؟ وہی مال ہو سکتا ہے کہ کوئی بیماریوں کے اندر خرچ ہو جائے، مقدمات میں خرچ ہو جائے، ایسی چیزوں میں خرچ ہو جائے. دوسرے لوگوں کے اوپر وہ بیماریاں آئیں نا جنہوں نے حلال سے کمایا ہوا، اللہ ان کو بیماری سے محفوظ رکھے، اس کے اوپر ایسی بیماری لاد دی کہ وہ سارا مال بیماری میں ہی چلا گیا. ہو سکتا ہے کسی مقدمے میں اللہ تعالیٰ نے ایسا ڈال دیا کہ مقدموں میں ہی چلا گیا. ہو سکتا ہے کوئی ایسی اور آفت آ گئی کہ انسان کا مال وہیں لگتا جا رہا ہے. तो अल्लाह ताला उसकी बरकत खींच लेते हैं। वो ही काम जो उसका 1,000 से हो सकता था वो 10,000 से हो रहा है, या कहीं इतना आपने कहीं स्पेंड करना था वो ऐसा आपको पेनल्टी पड़ गई, अब आपको 1,000 आपने देने थे वहां पे 1,500 देने पड़ गए, 500 का घाटा आपको बेकार का होगा। वो बेकार नहीं था, वो सूद की वजह से तो बरकत चली गई। वही एक हलाल खाने वाले का वही काम थोड़े में हो जाता है, जो सूद खोर है उसका बहुत ज्यादा में होता है, बहुत ज्यादा स्पेंड करने पड़ते हैं, तो बरकत नहीं है। इसी तरह अल्लाह ताला उसमें से राहत खींच लेता है, उसको राहत नहीं मिलती। बड़े बड़े आलीशान बंगलों में रह रहे होते हैं, खाने पीने की सहूलियात हैं और लग्जरीज हैं, नौकर चौकर हैं, शानो शौकत है। अब दूसरा बंदा देख के कहता है वाह, आप तो कहते हैं कि रिबा से ये होता है वो होता है, लो हमने तो उनको देखा तो इतने माशाल्लाह, बहुत उनका तो कारोबार ऐसा, उनका तो ये, उनका तो वो, सोने चांदी के अंदर खेल रहे हैं, वो तो इस तरह है। लेकिन जिस चीज का नाम सुकून है, दिली खुशी है, इत्मीनान है ना, वो ना किसी फैक्ट्री में मिलता है, ना किसी बाजार में बिकता है, ना ना कहीं नरम बिस्तरों में मिलता है। वो एक ऐसी रहमत है जो अल्लाह ताला खुद दिलों में डालता है। बाज दफा आप लाखों का सामान घर में रखते हुए भी एक नींद की राहत को देख लें, तो नींद नहीं अगर आ रही ना, तो चाहे आपका बिस्तर जो है वो लाखों का आपने खरीदा हुआ और उसके ऊपर गद्दे भी इतने महंगे और तकिए भी इतने महंगे, लेकिन क्या नींद का आ जाना इन सामानों के साथ हो सकता है? इसके मुकाबले में आप देखते हैं कि कई लोग ऐसे होते हैं कि जमीन पे पड़े होते हैं और आराम से सो रहे होते हैं सुकून की नींद, और ऐसे लोग जो होते हैं वो कई स्लीपिंग पिल्स खा रहे होते हैं, और कई स्लीपिंग पिल्स से भी नहीं कईयों को आराम मिलता। नींद के सामान तो आप बाजार से ला सकते हैं, मगर नींद आप किसी बाजार से नहीं ला सकते खरीद के। तो इसीलिए आप देखें कई बहुत, जैसे यहाँ पे भी अमेरिका में भी 75% लोग जो है ना वो स्लीपिंग पिल्स के बगैर सो नहीं सकते। अब आप कहेंगे नहीं यहाँ पे तो बड़ी ऐश है, आराम है, ये है वो है। क्या ऐश आराम है, एसी लगे हुए हैं, नरम बिस्तरे हैं, लग्जूरियस घर हैं, फिर भी सुकून नहीं है। तो सूदखोर के पास सब कुछ भी हो जाए ना, मगर सुकून नाम की चीज नहीं होती, राहत नाम की चीज नहीं होती। वैसे भी देखें वो इतना पागल हुआ होता है, अगर उसके पास करोड़ है तो उसने 1.5 करोड़ बनाना है, 1.5 करोड़ है तो 2 करोड़ बनाने, उस समय वो इतना पागल हो जाता है कि ना उसको खाने का होश, ना पीने का होश, ना बीवी बच्चों का। यहाँ पे फैक्ट्रियां चल रही हैं, यहाँ पे मिलें चल रही हैं, यहाँ जाना है, वहां जाना है, बिजनेस का ये चीज है वो चीज है, दीवानों की तरह होता है, और सामान सारा इकट्ठा कर लेते हैं, लेकिन राहत का सामान होने के बावजूद राहत ही नहीं है उनको। तो इसलिए अल्लाह ताला मिटाता है या अल्लाह जाया कर देता है रिबा को और बढ़ाता है सदकात को, सदके को अल्लाह बढ़ाता है। सदके के जरिए जब इंसान सदका करता है, जो ऐसी सोसाइटी होगी जहां पे गरीबों की जरूरियात का ख्याल रखा जा रहा होगा, वहां पे कितनी हारमनी होगी, वहां पे इंसान को कितना दिली सुकून होगा। आप देखेंगे ये आजमा के बाद आप देख सकते हैं कि सुभान अल्लाह, जब आप खुद कोई चीज लेते हैं तो तब इतना सुकून नहीं मिलता, लेकिन जब आप देते हैं ना किसी को तो तब जो खुशी मिलती है वो खुशी अल्लाह डालता है ना, वो कहां से वो खुशी आती है? हालांकि आपने दिया, आपके हाथ से गया, लेकिन वो जो खुशी, जो इत्मीनान, जो सुकून होता है वो कहीं से नहीं मिल सकता। तो जहां पे भी सदकात का रिवाज होगा वहां पे हार्मनी होगी, वहां पे पीस होगा, अमनो अमान होगा, और जहां पे सूद होगा वहां पे अनएम्प्लॉयमेंट होगी, इन्फ्लेशन होगी, ये एक स्कॉलर ने स्टैटिस्टिक से प्रूव भी किया था। इसीलिए आप देखें, जब रिसेशन हुआ था तो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट कम किया जा रहा है ताकि लोग और चीजें खरीदें। वल्लाहु ला युहिब्बु कुल्ला कफ्फारिन अथीम, और अल्लाह ताला मोहब्बत नहीं रखता, अल्लाह ताला पसंद नहीं करता किसी भी नाशुकरे को, गुनाहगार को। इसकी नाशुकरी क्या है? इसकी नाशुकरी है कि ये सूद, जिसको कि अल्लाह ताला ने मना किया था और सदके को करने का हुक्म दिया था, ये इंसान सूद खा रहा है और सदका नहीं दे रहा, अरे बिल्कुल उलट कर रहा है। अल्लाह ताला की ये नेमत है ना, अल्लाह की दी हुई नेमत है माल। अब माल का हक क्या था? दूसरों पे स्पेंड करना, सदका करना। तो इसने नाशुकरी की इस माल की कि इसने लोगों से रोक दिया। और असीम गुनाहगार, गुनाहगार किस तरह से है? अल्लाह की नाफरमानी करने वाला है ना, अल्लाह के साफ हुक्म को जान बूझ के तोड़ रहा है, ये जानता है फिर भी तोड़ता है। और इन लदीना आमन व आमिलु सालिहात, और वो लोग जो ईमान लाए और उन्होंने अच्छे अमल किए, नेक अमल किए, ईमान ला के, ईमान लाना क्या होता है? मान जाना अल्लाह का हुक्म। अल्लाह पे ईमान लाया तो अल्लाह के हुक्म भी तो मानने पड़ेंगे ना। तो जो अल्लाह के हुक्मों को मान जाता है और नेक अमल करता है, वाकामु सलात, और उसने नमाज कायम की। नमाज का फायदा क्या होता है? नमाज आपके लिए 5 टाइम्स का रिमाइंडर है कि आप अल्लाह के सामने खड़े होने वाले हैं हशर के मैदान में। 5 टाइम्स आपको रिमाइंड कराती, जैसे नमाज में खड़े हुए हो ना हाथ बांध के, इसी तरह एक दिन आएगा कि तुम अल्लाह के सामने खड़े होगे, जहां कोई मददगार नहीं होगा। वह आता वो ज़कात, और जो देता है, जो उन्होंने जिन्होंने ज़कात दी, ज़कात देने के बजाय सूद देने के लिए, सूद खाने के, सूद पे कर्ज दे के, दूसरों की जरूरियात से फायदा उठाने के, तुम ज़कात दो। अगर जकात सही से मुस्तहकीन को दी जाए ना, तो किसी को सूद पे कर्जे लेने की जरूरत ही ना पड़े। किसी यूरोपियन माहिर ने कहा था कि मुसलमानों का निजामे जकात ऐसी चीज है, अगर मुसलमान इसके वाकई इसको सही तरह से इसको प्रैक्टिस करें, तो इस कौम में कोई मुफलिस और मुसीबत ज़दा नजर ही नहीं आएगा। इसलिए कि जकात सिर्फ मुस्लिम्स को दी जाती है, सदका किसी को भी दे सकते हैं, जकात ओनली मुस्लिम्स, क्योंकि मुस्लिम से ही कलेक्ट होती है। तो जो जकात देते हैं, अब जो जकात देने वाला माशरा होगा, सारे ही लोग जकात देने वाले हैं, बड़े बड़े लोग जिसके पास जितना ज्यादा है वो उतनी ही बड़ी जकात दे रहा है, तो मुझे बताएं वहां पे कहाँ से फिर ये होगा कि सूद के ऊपर कर्ज किसी को लेने की जरूरत पड़े। लहुम अजरुहुम इंदा रब्बिहिम, उनके लिए अजर है उनके रब के पास। वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, और उनको कोई खौफ नहीं होगा और कोई रंज नहीं होगा, कोई दुख नहीं होगा, उनका अजर उनके रब के पास है। यहाँ तक तिलावत सुने, फिर आगे चलते हैं इंशाल्लाह।
الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون
देखिए, सूद किसी भी माशरे में खत्म नहीं हो सकता जब तक वहां पे सदके का रिवाज ना हो, जकात ना सही दी जाए। तो जब माशरे में हर कोई सदका करने वाला होगा ना, दूसरे की हेल्प करने वाला, तो फिर वहां पे सूद वाला निजाम रहेगा ही नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस किसी का माल सूद से ज्यादा होगा आखिरकार वो किल्लत की तरफ जाएगा। यानी बाज दफा एकदम दिवालिया नहीं भी होगा लेकिन वो डाउनफॉल की तरफ जाएगा, ये याद रखें। सूद को अल्लाह ताला मिटा देता है जब उसने खुद ही फरमा दिया, तो फिर वो जब बताएं उस ऐसे बंदे का माल कैसे बाकी रह सकता है। सदका देने वाले के माल में भी बरकत होती है, उम्र में भी बरकत होती है, सेहत में भी बरकत होती है, और सूद वाले के ना माल में बरकत, ना उम्र में बरकत, ना सेहत में बरकत। तो रिजल्ट क्या हुआ? अल्लाह सूद को मिटा देता है और सदके को अल्लाह उसमें बरकत डाल देता है, उसको बढ़ाता है। लेकिन बढ़ाना और घटाना तो अल्लाह के हाथ में है ना, जब उसने खुद ही फरमा दिया तो फिर क्या। और ये जो चार काम यहाँ पे कहेंगे ना, ईमान, साले अमल, नमाज और जकात, बाज दफा सूदखोर ये चारों काम करते हैं, कहते हैं हमने अल्लाह का हक तो दे दिया, अब ये हमारा काम है, हमारा बिजनेस है, ये तो सूद के बगैर नहीं चलता। हालांकि दीन सिर्फ नमाज पढ़ने का नाम नहीं है, ठीक है, दीन सिर्फ जकात थोड़ी बहुत अदा कर देने का नाम नहीं है, दीन तो पूरा लाइफ स्टाइल है। ईमान ये नहीं है कि मैं मर्जी के काम तो मान लूं और जो मेरी मर्जी ना हो, मुश्किल लगे वो ना मानूं, हर अल्लाह के हुक्म को मानना वो ही तो ईमान है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह, ए ईमान वालों अल्लाह से डरो। और अब फाइनल कह दिया, वदरू मा बाकी अमिन रिबा, छोड़ दो जो रिबा में से बाकी रह गया, अब इसको बस करो, छोड़ दो इसको। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हज्जतुल विदा के मौके पे फरमाया था ना कि जाहलियत के तमाम सूद आज मेरे इन दोनों कदमों तले दफन कर दिए गए, और सबसे पहला सूद जो जिससे मैं दस्तबरदार होता हूँ वो हजरत अब्बास का सूद है। हजरत अब्बास भी उस जमाने के अंदर सूद पे कर्ज दिया करते थे, तो फरमाया कि उन्होंने कुछ लोगों को जाहिर है कर्ज दिया हुआ था, और कर्ज जब लौटाने का मामला आता है तो सूद समेत लौटाना था। तो अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, अब ये सूद के साथ वो लोग वापस नहीं करेंगे, बल्कि अब सूद को मैं खत्म करता हूं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले अपने खानदान से शुरुआत की कि मैं अपने खानदान का सूद सबसे पहले माफ करता हूँ, यानी अब कोई किसी को भी सूद देने की जरूरत नहीं है। इस आयत का भी एक शान नजूल है। कहा जाता है कि सूद की हुरमत नाजिल होने से पहले आम अरब में सूद का रिवाज बहुत था, उनकी भी सूद पे सारी चलती थी। तो जब उसकी मुमानियत आई तो मुसलमानों ने तो सूद के सारे मामलात छोड़ दिए, लेकिन कुछ लोगों के मुतालबात सूद की बकाया रकमों के दूसरों पर थे। इसी में ये वाकया आया कि बनु सकीफ जो था एक कबीला और बनु मखजूम था, उनमें भी आपस में सूदी मामलात का सिलसिला था। तो बनु सकीफ के लोगों का कुछ सूदी मुतालबा बनु मखजूम की तरफ था। अब बनु मखजूम तो मुसलमान हो गए इस्लाम लाने के बाद, उन्होंने कहा कि हम तो सूद की रकम अदा करना जायज नहीं समझते, सूद तो हमारे यहाँ हराम हो गया। अब यानी इन्होंने कर्ज लिया हुआ ना, अब वो कहते हैं हम कर्ज वापस तो करेंगे लेकिन सूद समेत नहीं करेंगे। तो बनु सकीर के लोगों ने मुतालबा शुरू कर दिया, वो तो अभी मुसलमान नहीं हुए थे, अगर मुसलमानों से उनके साथ मुसालियत हो चुकी थी, उनके साथ टर्म्स थे लेकिन मुसलमान तो नहीं थे, वो कह रहे थे हमें तो सूद चाहिए ना, वो तो काफिर थे। बनु मखजूम ने के लोगों ने कहा कि इस्लाम में दाखिल होने के बाद हम अपनी इस्लामी कमाई को सूद की अदायगी में खर्च नहीं करेंगे। यहां से ये भी पता चल गया ना कि सूद देना भी हराम है। अब ये झगड़ा मक्का में पेश आया, उस वक्त मक्का के अमीर हजरत मुआज थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ उन्होंने ये इस मामले को भेजा कि ये इसका क्या किया जाए। इस पे ये कुरान की आयत नाजिल हुई कि کہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد سود کے جتنے بھی پچھلے ان حکم سے نازل ہونے سے پہلے جتنے معاملات تھے نا سودی، وہ سب ختم ہوگا. پچھلا سود نہ لیا جائے گا نہ اب سود دیا جائے گا.